नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में हराकर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की। ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रजत पदक जीता। संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता और पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला जारी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कल विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। एक रिपोर्ट।
श्रृंखला के अंतिम और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबले में कल भारतीय टीम अपने असली रंग में नजर आई। भारत ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव के 4-4 विकेट की बदौलत पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम को 48 ओवर से पहले ही 270 रन पर ढेर कर दिया। अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने 106 रन की शतकीय पारी खेली। इसके जवाब में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने भारत को शानदार शुरुआत दी। रोहित ने 75 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ मोर्चा संभाला और टीम को जीत दिलाई। जायसवाल ने अपने एक दिवसीय करियर का पहला शतक लगाते हुए नाबाद 116 रन की पारी खेली, जबकि कोहली ने नाबाद 65 रन की पारी खेली और टीम को न सिर्फ इस मुकाबले में जीत दिलाई बल्कि श्रृंखला भी भारत के नाम करते हुए टेस्ट में मिली हार का हिसाब बराबर किया। इसके साथ ही यशस्वी तीनों फॉर्मेट में शतक जमाने वाले छठे भारतीय बन गए हैं। इस मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा ने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए। वहीं विराट कोहली भी एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बने। विराट ने 3 मैचों में सर्वाधिक 302 रन बनाए। ये 12वां मौका था जब विराट एक दिवसीय क्रिकेट में श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। इसके साथ ही वे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला 9 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि कुछ ही महीनों में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप से पहले महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
भारत ने आखिरी बार 2023 विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था और 2 साल बाद कल भारतीय टीम के हिस्से में टॉस का फैसला आया। तो ये टॉस भारत के लिए सीरीज का सबसे बड़ा चेंज फैक्टर रहा, या फिर कही जाए कि भारतीय गेंदबाजी ने जो दूसरे मैच के बाद सुधार किया, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर कुलदीप यादव हों, दोनों ने शानदार और बहुत सदी भी गेंदबाजी की और बल्लेबाजी तो लगातार भारतीय टीम की इस सीरीज में ताकत रही, तो कौन सा फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण?
देखिए, टॉस एक कारण हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप गेंदबाजी देखें, आप देखिए अपनी कमियों से सीखना, ग्रे एरियाज पर काम करना, यह भारत की सबसे बड़ी खूबी है। अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा टीम पर एक बोझ साबित हो रहे थे, पहले 2 मैचों में चले नहीं, तीसरे मैच में पहले 2 ओवर में 27 रन लौटा दिए थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद जरा सा उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया। वो जानते थे कि अब हिट द डेक से बात बनने वाली नहीं है, उन्होंने लेंथ को आगे रखा और उसी का उन्हें पारितोषिक मिला, उनको इनाम मिला और खूब उन्होंने 4 विकेट भी चटकाए। मार्क्रम जैसे खिलाड़ी, क्विंटन डिकॉक, उनको उन्होंने आउट किया। इसी तरह से कुलदीप यादव को देखें तो मैं केएल राहुल को बधाई दूंगा इस बात के लिए, बहुत सदी हुई उनकी कप्तानी थी और उन्होंने कुलदीप यादव के ओवर बचाकर रखे हुए थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी लेंथ जो है, क्योंकि ओस थी तो लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा और ये बहुत कारगर साबित हुआ।
जी बिल्कुल, और भारत की जीत से बड़ा जो फैक्टर है जिसपे सबकी नजरें थी कि 3 मैचों के लिए हमें विराट कोहली और हिटमैन की जोड़ी देखने को मिलेगी, तो इनकी परफॉर्मेंस पे बात की जाए, जो कि लगातार चर्चाएं हो रही थी, दावेदारी अगले विश्व कप के लिए हैं जो 2 साल बाद खेला जाना है 2027 में, कितना ये लोग उस चुनौती पे, फिटनेस के मापदंडों पे और परफॉर्मेंस पे खरे उतरे दिखे?
देखिए, मैं तो कहूंगा पहले विराट कोहली से अगर आप बात करें तो सिडनी में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचों में वो चले नहीं थे, लेकिन सिडनी मैच जो है एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और वहां वो चले तो ऐसे चले कि यहां 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी, हर कोई बस यही कह रहा था, हम भी दुआ कर रहे थे कि आज साउथ अफ्रीका कुछ इस मैच में ज्यादा रन बनाता
बना देता,
तो शायद इनकी भी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी ये बनाते और सचिन के रिकॉर्ड की और करीब तक पहुंचते 100 सेंचुरी के रिकॉर्ड को, हालांकि बहुत मुश्किल काम है वो, लेकिन अपने आप में मैं कहूंगा कि विराट कोहली ने समा बांध दिया, जैसा चाहा वैसा उन्होंने शॉट लगाए और वहीं रोहित शर्मा देखें हिटमैन, उनका जो बल्ला है उन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, दोनों ने स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। विराट कोहली इतने आक्रामक, 7-7 छक्के एक मैच में लगाते हुए अपने वनडे में तो उनको नहीं देखा होगा, अमूमन नहीं लगाते थे, लेकिन यहां 7 छक्के एक मैच में उन्होंने लगाए, छक्के लगाने लगे हैं, तेज खेलने लगे हैं। एक मौके पर तो एक मैच में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उन्हीं का था। रोहित शर्मा को देखें, वो अब जो कप्तान के तौर पर वो इम्पैक्टफुल पारियां खेलते थे, अब वो उससे बिल्कुल अलग हट गए हैं। अब वो लंबी पारी खेलने के फिराक में रहते हैं, अब वो लंबी पारी खेलेंगे तो लंबा स्कोर खड़ा करेंगे। अब हो सकता है कि उनकी जो नई स्ट्रेटजी है, इससे आपको रोहित शर्मा के बल्ले से कई सेंचुरीज आने वाले समय में देखने को मिले।
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं, आपने कहा कि बदलाव किया, हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ने अपनी तकनीकों में आपस में अदला बदली कर ली कि अब मैं थोड़ा समय लेता हूं और आप मेरी तरह आक्रामक रन बनाइए, जिस तरह कल देखने को मिला।
बिल्कुल डिफेंस करते हुए दिखाई दिए रोहित शर्मा, और यशस्वी को देखिए, मैं तो कहूंगा एक बेंच स्ट्रेंथ हमारी तैयार हो रही है बहुत अच्छी, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। अभी तो शुभमन गिल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, इनको मौके मिल गए और उस मौके को इन्होंने दोनों हाथों से बुनाया, दोनों ने सेंचुरी बनाई, तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है अपनी बेंच स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए।
जी बिल्कुल, यहां से खेल प्रेमियों को उम्मीद होगी कि आने वाली 5 T20 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम शानदार खेले और 11 जनवरी को एक बार फिर जब ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ तो एक शानदार मैच देखने को मिले। दोहा में जारी ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल्स 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर थ्री पोजीशंस में रजत पदक जीतकर दिन की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
सिमरनप्रीत ने महिलाओं के फाइनल में 41 का स्कोर करते हुए यांग जिन के जूनियर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और दिन का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं ऐश्वर्या ने 413.3 अंक हासिल किए और रजत पदक जीता। वे चेक गणराज्य के ज़िरी प्रीव्रात्स्की से पीछे रहे, जिन्होंने 414.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। चीन के लिए युकुन ने कांस्य पदक जीता, ये ऐश्वर्या का 7वां ISSF विश्व कप पदक है। जोरावर सिंह संधू ने भी पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, वे कल पदक के लिए निशाना साधते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की सुरुचि सिंह ने कल महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथी संयम ने रजत पदक हासिल किया था। वहीं पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सम्राट राणा ने कांस्य पदक जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
तो भारतीय निशानेबाजों ने इस पूरे साल लगातार, खासकर विश्व कप की जो स्पर्धाएं होती हैं 6 की 6, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और उसी तरह का अंत होता भी नजर आ रहा है।
जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने सिमरनजीत कौर बरार का अब ये जिक्र किया तो उसमें उन्होंने देखो, अगर अप्रैल में जो इवेंट हुई थी ना ISSF वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था और फाइनल में 33 का स्कोर किया था, यहां उन्होंने अपने उस सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में बदला, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। और दूसरा जो फाइनल का जो स्कोर है उसमें भी उन्होंने सुधार किया, यहाँ 41 का उन्होंने स्कोर किया। ऐसे ही ऐश्वर्य प्रताप तोमर पर हमेशा नजरें रहती हैं क्योंकि टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने शिरकत की थी भारतीय टीम की तरफ से। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें स्वप्निल कुसाले ने, आपको याद होगा, ओलंपिक में मेडल जीता था इसी इवेंट में 50 मीटर थ्री पोजीशन में। तो भविष्य भारत का उज्जवल है इस इवेंट में।
जी बिल्कुल, और इतना उज्जवल है कि कहा जा सकता है कि इस समय 25 मीटर रैपिड फायर में भी दो भारतीय निशानेबाज जो हैं अपने निशाने साध रहे हैं और अच्छी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के लिए एक और पदक आज के दिन लगभग ऐसा नजर आ रहा है। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया। शाश्वत ने आज फाइनल्स में मिथुन मंजुनाथ को 50 मिनट तक चले एक मुकाबले में 21-11, 17-21 और 21-13 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स फाइनल में तन्वी शर्मा को हार का सामना करना पड़ा और वे उप विजेता बनी। और पुरुष डबल्स फाइनल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक की जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा।
दरअसल इसमें बस आप यही कह सकते हैं कि संस्कार सारस्वत जो हैं वो राजस्थान, जोधपुर के हैं, राजस्थान के, और उन्होंने जिस तरह से पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन को हराया, एक अच्छा कंपटीशन उनको मिला। और उसके अलावा वो नॉर्थ ईस्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस में गुवाहाटी में, वहाँ पर उन्होंने ये हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है। और मैं तो कहूँगा कि आगे भी वो इसको बरकरार रखें, ऐसी पूरे देश की इच्छा है।
जी बिल्कुल, और एक लगातार जो शुरुआत के समय में देखा जाए, थोड़ा सा सूखा सा था खिताबों का, वो धीरे धीरे साल के आखिरी तक लक्ष्य सेन द्वारा या फिर डबल्स जोड़ियों द्वारा पढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि सुपर हैंडेड खिताब है, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छे मनोबल में वृद्धि करेगा।
जी,
और अब रुख करते हैं पुरुष जूनियर्स हॉकी विश्व कप सेमीफाइनल का, जहां इस समय चेन्नई में भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला जारी है। हालांकि ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम 0-2 से पीछे है। तो जैसा कि हमने बेल्जियम के साथ क्वार्टर फाइनल में देखा कि पहले 1-0 से पीछे और एक शानदार कमबैक, वो खामियां जहां पे हम लोग पेनल्टी कॉर्नर में पीछे नजर आते थे, वहां पे भारत ने अच्छा किया और असली मुकाबला तो यही जारी है।
देखिए, शुरुआत जो है उनको जो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से जो अटैक उन्होंने किए हैं जर्मनी ने आज, और उसमें खासकर पेनल्टी कॉर्नर बहुत जल्दी जुटाया और उसके बाद इनडायरेक्ट पर उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने की कोशिश की और वहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ गंभीर रूप से और फिर पेनल्टी स्ट्रोक मिला और पेनल्टी स्ट्रोक पर उन्होंने पहला गोल किया और उसके बाद दूसरा गोल भी उसके तुरंत बाद हुआ। तो इस तरह से दो गोल से पिछड़ना एक संकट की घड़ी जरूर है, क्योंकि 2023 का हमें जो कड़वी यादें हैं वो हम भूल नहीं सकते। तब भी हमने हॉलैंड को हराया था, नीदरलैंड को, और उसके बाद हम जर्मनी से 1-4 से हार गए थे। लेकिन इस बार देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है।
जी बिल्कुल, जो वो मुकाबला खेला गया जिसका आपने जिक्र भी किया कुआलालंपुर में, भारत चाहेगी कि वापस क्वार्टर फाइनल जैसा एक कमबैक दिखाए। और श्रीजेश ने, जो कोच हैं टीम के, उन्होंने भी जिक्र किया था कि टीम को अभी भी कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का पूल मिला, राह थोड़ी सी आसान थी यहां तक कि, हालांकि बेल्जियम बीच में आया, लेकिन कई मोर्चों पे टीम को काम करने की जरूरत थी। लगातार 29 गोल किए, कोई गोल खाया नहीं, तो असली परीक्षा की घड़ी तो ये चल रही है टीम के लिए।
बिल्कुल, स्कोरिंग पावर भारत ने अच्छी दिखाई, क्योंकि ये भी बात सही है, आपने सही कहा कि वो कंपटीशन भारत को वैसा नहीं मिला, क्योंकि चिली, स्विट्जरलैंड, ओमान की वो पहचान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में। लेकिन जिस तरह से हमने बेल्जियम जैसी एक आला दर्जे की टीम को बराबरी पर रोका, हालांकि कुछ एक फॉरवर्ड खिलाड़ियों से कुछ एक गलतियां हुई जिस पर श्रीजेश ने निशाना भी साधा, लेकिन अब प्रिंस दीप सिंह, जो कि श्रीजेश के बहुत बड़े, मैं कहूंगा फैन ही नहीं बल्कि भक्त हैं और गोलकीपर हैं भारत के, अब वो कम से कम उनके आक्रमणों को पूरी तरह से निस्ताबूद करें और उसके बाद भारतीय फॉरवर्ड अपनी संघर्ष क्षमता का परिचय दिखाते हुए बराबरी पर आए, जीते हैं भाई, हम तो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
जी बिल्कुल, बहस दो कदम दूर हैं और भारतीय टीम चाहेगी कि इस दूरी को पाटा जाए अपने ही गृह मैदानों पे और अपनी होम कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया जाए। वहीं साल के अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय दौरे में इस समय पुरुषों की सीनियर टीम भी अपना मुकाबला खेल रही है 3 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। उनका मैच भी जारी है, जो इस कैलेंडर का भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। अगले वर्ष होने वाले फुटबॉल विश्व कप का कार्यक्रम जारी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ फीफा ने यह घोषणा की कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 48 टीमों के टूर्नामेंट के लिए ग्रुपों को अंतिम रूप देने के एक दिन बाद की विश्व कप 11 जून को मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबलों के साथ शुरू होगा। कुल 104 मैच खेले जाएंगे और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, जिसपे सबकी नजरें हैं, फेवरेट्स है फुटबॉल की, 16 जून को अपने अभियान की शुरुआत करेगी अल्जीरिया के खिलाफ। तो सबको उम्मीद थी, फुटबॉल तो विश्व में अपनी लोकप्रियताओं के एक अलग ही शिखर पर है।
जी हाँ, बिल्कुल, चार बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी से बता दूं कि नॉर्वे और फ्रांस का जो ग्रुप एक का मुकाबला है, जिसमें अर्लिंग हॉलैंड और जो किलियन एम्बापे हैं, इन दोनों को आमने सामने देखने को मिलेगा मौका हमें। और ग्रुप एल एकदम ग्रुप ऑफ डेथ है, जिसमें इंग्लैंड है, क्रोएशिया है, घाना है, पनामा है, अच्छी टीमें हैं, ग्रुप ऑफ डेथ आप इसे कह सकते हैं। अगर अर्जेंटीना ग्रुप जे से और पुर्तगाल ग्रुप के से टॉप पर रहते हैं तो 11 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में आपको लियोनेल मेसी और रोनाल्डो आमने सामने दिख सकते हैं।
जी बिल्कुल, और सबकी नजरें होंगी, और वे तमाम समीकरण जिस तरह हम लोग आईपीएल के मैचों में देखते हैं कि कुछ इस तरह के समीकरण बने कि हमारे प्रिय खिलाड़ी और प्रिय टीमें आगे आए, वैसा ही देखने को मिलेगा। और आखिरी लड़ाई जो है प्रतियोगिता की 19 जुलाई को न्यू जर्सी में होगी, जो तय करेगी कि फीफा 2026 का चैंपियन कौन होगा और कौन इस फुटबॉल के बहुप्रतिष्ठित किताब को अपने नाम करता है। विश्व कप के 78 मैच अमेरिका में, 13-13 मुकाबले कनाडा और मैक्सिको में खेले जाएंगे। हालांकि कनाडा, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया की टीमें अमेरिका में अपने मैच नहीं खेलेंगी।
बाकी एक आकर्षण और है, केप वर्डे, वो एक ऐसी टीम हम पहले एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं और इनको 1975 में पुर्तगाल से आजादी मिली थी और ये 6 लाख से भी कम आबादी है, वो यहां पर ग्रुप एच में खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसकी आबादी गाजियाबाद से या नोएडा से या रोहिणी से भी कम है।
जी बिल्कुल, अब भारतीय भी सोच रहे होंगे कि अपनी दावेदारी को और मजबूत किया जाए और फीफा पे दस्तक दी जाए। और श्रोताओं, इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।